तो हम लोग ये समझने लगे कि हम भी ब्रह्म हैं। सेवक का भाव निकल गया, इसलिए वैष्णवाचार्य रामानुज मध्वाचार्य कृष्ण स्वामी जी बाली ये सब लोग आए और हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे प्रभु हैं, इस चीज का प्रचार किया, इसलिए मायावाद का उन्होंने खंडन किया। दूसरी बात, उन्होंने एक अतीत भेदाभेद एक प्रकरण ग्रंथ लिखा। उस समय में सुंदरानंद विद्या विनोद अनंत वासुदेव जी और हरिदास ये तीन त्रिशूल निकले थे। उन्होंने कहा कि मध्वाचार्य के संप्रदाय से हमारा कोई संबंध नहीं और अद्वैत ज्ञान के बदले उन्होंने अद्वैत ज्ञान दे दिया। उन्होंने अपने अचिंत भेदाभेद ग्रंथ में गौड़ीय तीन ठाकुर में और एक ग्रंथ और अचिंत भेदाभेद गौड़ीय तीन ठाकुर और गौड़ीय दर्शन सुंदरानंद विनोद जी ने इनके गुरु भाई से पहले फिर अपने आप गुरु भाई के पद से खारिज हो गए, हटा दिया। बाबा जी इत्यादि हो गए, नंदिनी क्या हो गए। और हरिदास दास जी ने कुछ ग्रंथ प्रकाश किया और उन्हीं के एक और समतुल्य थे चैतन्य चरितामृत में, जिन्होंने भाष्य लिखा है क्या उसको चैतन्य चरितामृत मोटी वाली इतना बड़ा फल राधा गोविंद नाथ। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव के चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के विचारों को तोड़ मोड़ कर चौपट कर दिया, इसलिए गुरु जी ने अचिंत भेदाभेद लिखा। अद्वैत ज्ञान और अद्वैत बात एक नहीं है, उसका खंडन किया उस पुस्तक का और कहा कि इस पुस्तक को जो लोग पढ़ेंगे उनका सर्वनाश होगा। और आजकल हमारे संप्रदाय में बहुत से लोग गौड़ीय वैष्णव लोग भी उनको पढ़ते हैं, जो उनके चैतन्य चरितामृत के भाष्य को पढ़ेंगे टीकाओं को उनको भक्ति गड़बड़ हो जाएगी, यही समझो भक्ति नहीं होगी। उनके विचार सब प्रभुपाद के विचार और भक्ति विनोद ठाकुर के विचार के विरुद्ध हो जाएंगे, इसलिए उन किताबों को मत पढ़ना, उन ग्रंथों को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत से लोगों का हो गया है। इसलिए गुरु जी ने अचिंत भेदाभेद एक ग्रंथ लिखा, वो पूरा नहीं हुआ। मेरी इच्छा थी कि उसके आगे पीछे का कुछ और संग जोड़कर ठीक कर उस ग्रंथ को पूरा करके हिंदी भाषा में या बंगला भाषा में उसको छपवाएंगे, बहुत ही सुंदर चीज है। तो वो ग्रंथ लिखा और भी बहुत से कुछ काम उन्होंने किया, जहां जहां पर भी हमारे प्रभुपाद जी के विचारों पर कोई खंडन किया या विचारों को कुछ भी इधर उधर का किया, गुरु महाराज ने तत्क्षणात् उसका कठोर प्रतिवाद, जैसे वृंदावन के एक निम्बार्क संप्रदाय के विद्वान ने जो अपने को विद्वान मानते थे, उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी ने केशव काश्मीरी जो निम्बार्क संप्रदाय है उनको हरा दिया और इसके बाद में उनको जुगल मंत्र चैतन्य महाप्रभु जी ने दिलवाया और तब से वो लोग भजन करने लगे, जुगल उपासना राधा कृष्ण का भजन करने लगे। तो उनके मन में कुछ ईर्ष्या और डर हुई, तो उन्होंने पत्रिका में लिखा केशव काश्मीरी से और चैतन्य महाप्रभु से भेंट हुई थी और उसमें चैतन्य महाप्रभु जी को केशव काश्मीरी ने परास्त कर दिया, पराजित कर दिया और उनको राधा कृष्ण का मंत्र दिया। गुरु जी उस समय में वहीं पर थे और हिंदी की पत्रिका उनकी सुदर्शन नाम की पत्रिका थी हमारे पास में आई। मैंने गुरु जी को दिखलाया, गुरु जी एकदम उनका शरीर लाल हो गया। पर अभी इसी समय लिखो इसका प्रतिवाद, वो बोलते गए और मैं उसका प्रतिवाद लिखा। उसमें लिखा निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं, कभी हुआ ही पैदा नहीं और निम्बार्क संप्रदाय कोई है नहीं। हमारे चारों संप्रदाय में निम्बादित हुए श्री ब्रह्म रुद्र सनक, तो उसी में सनक संप्रदाय में ये निम्बादित हुए। ये व्यास देव से कुछ ही पीछे हुए, उनके समसामयिक भी कहे जा सकते हैं या कुछ पीछे से हुए। उनका नाम का उल्लेख है, निम्बार्क नाम का कोई व्यक्ति नहीं, उनका कोई साहित्य नहीं। यहाँ तक कि यदि उनका नाम ठीक होता, वो कोई व्यक्ति होते तो जीव गोस्वामी जिन्होंने षट संदर्भ लिखा, बहुत से विद्वानों के नाम लिखे हैं, संप्रदायों का नाम लिखा, उनका नाम का उल्लेख कर। यहाँ तक कि अत्यंत आधुनिक हमारे बलदेव विद्याभूषण पाद जी, अभी 250 वर्ष पहले बलदेव विद्याभूषण जी ने समस्त आचार्यों के नाम और उनके विचार लिखे हैं, उनका विचार भी और उनका नाम भी उल्लेख करते, किंतु उन्होंने भी नहीं किया। और यहाँ तक कि रामानुज संप्रदाय के, वल्लभाचार्य संप्रदाय के या और भी संप्रदाय वाले हैं, रामानुज संप्रदाय के, मध्व संप्रदाय के, किसी भी विद्वान ने निम्बार्काचार्य का कहीं भी नाम उल्लेख नहीं किया है। इसलिए वो कोई व्यक्ति नहीं है, जाल और जुआ चोरी से षड्यंत्र करके वो एक निम्बार्क को पैदा कर दिया नाम, और उनके नाम पर जो एक ग्रंथ लिख दिया उस जिसको कोई नहीं जानता, ये लिख करके और पत्रिका में हमने गौड़ीय हमारी भागवत पत्रिका, अब वो चल नहीं सकी, हम लोग चला न सके, शरीर मेरा अस्वस्थ रहने लगा, कोई सहायक वैसा मिला नहीं, ये बंद हो गया। इच्छा तो थी अभी भी महाराज इत्यादि कहते हैं कि उसको चालू कीजिए, किंतु उसके लिए योग्य व्यक्तियों की भी जरूरत, तो उसमें हमने छाप दिया। छापने के साथ में उनके खेमे में आग लग गई और उन्होंने एक केस करवाया मथुरा कोर्ट में 1,00,000 रुपए की मानहानि का। 1,00,000 रुपया ये भागवत पत्रिका के संपादक और इसके संरक्षक भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी को देना पड़ेगा, हमारा बहुत मानहानि किया है। तो जब हम लोगों के पास में नोटिस आई तो गुरु जी ने वकील के पास में जाने की जरूरत नहीं थी, वकील के खुद ही बाबा थे, वो लोग जानते थे कि ये बैरिस्टर थे और बैरिस्टर से ये साधु हो गए हैं, इसलिए बड़े बड़े वकील लोग उनसे परामर्श लेते थे। और वास्तविक में ऐसा था, बैरिस्टर भी उनके सामने कुछ नहीं लगते, बैरिस्टर लोग उनसे राय पूछते थे कि कैसे हम इस केस में चले। तो उन्होंने लिखवाया, हमने जो कुछ लिखा है वो परम सत्य लिखा है, यदि उनको कुछ कहना है तो इसका उत्तर दें, और यदि केस किया है तो हर्जाना उनको देना पड़ेगा, हम साबित करेंगे, इसीलिए हम आए हैं। निम्बार्क नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था और उनका विचार संपूर्ण रूप से भूल और भ्रांत है। वकील ने उनको परामर्श दिया, देखो कुछ लोग केचुआ होता है बरसात में, केचुआ जानता है, केचुआ होता है, तो केचुआ निकालने के लिए वो किसी गर्त में, गड्ढे में वो खोदते हैं, केचुआ निकाल करके किसी काम में लगाएंगे, तो कहीं सांप ने निकल आया तुम्हें चर्च न दे, ये मास ग्रंथर है केशव महाराज, दिल में हाथ मत लगाओ, सांप निकल आएगा, इनको कभी छेड़ो मत, हमें तो लीना का देना पड़ जाएगा, मामला उठा लो। अंत में वकीलों के कहने से उन लोगों ने मामला उठा लिया। ऐसे तेजस्वी महापुरुष ये थे कि कुछ लोगों ने हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विचारों का कुछ खंडन किया था। इसलिए प्रभुपाद जी का ये कहना था कि कुछ लोग जो लीला स्मरण करते हैं, योग्यता नहीं होने पर भी लीला का स्मरण करते हैं और इसी के नाम पर अवैध स्त्रियों का संग करते हैं, बाबा जी बन गए और कुछ घर छोड़ करके बाबा जी आई वृंदावन में राधा कुंड में रहते हैं और आती तो वो लोग चिंता करके पतित हो करके भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब योग्यताधिकार वैसा हो तब उन लीलाओं का स्मरण करे, नहीं तो वैदिक भक्ति के अनुसार में हम लोगों को चल करके भजन करना चाहिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाता, बिना अधिकारी के वैसा न करे। जब शुद्ध सत्व जब हमारे हृदय में प्रकटित होगा उसमें ऐसी चीजें संभव है और नहीं तो सहजिया होना असंभावी है। वो लोग रास लीला करते हैं और गंदी बातें करते हैं, इसलिए गुरु जी ने उनके विरुद्ध में कुछ लिखा था तो वो प्रभुपाद जी के विरुद्ध में उन लोगों ने लिखा। जब लिखा तो गुरु जी ने 5 प्रबंध हम लिखेंगे उसका शिरोनामा केवल दिया उनके विरुद्ध में, रावण का सीता हरण, पंचानन शैली का विष्णु प्रिया भजन, सावरी शाला के बीच में गलत और ऐसे ही 2 और मुझे याद है, ऐसे 5 प्रबंध शिरोनाम हम इसके अंदर में लिखेंगे। रावण का सीता हरण माने क्या, रावण त्रिदंड वेश लेकर के सीता का हरण किया, ऐसे ही साधु का वेश लेकर के अनाचार करेंगे ये सहजिया बात करेंगे इसका हम ठोस प्रतिवाद करेंगे। सावरी शाला के बीच में ही गलत कहा, ये शाला जो होता है ना गाली, गाली मत समझो, सावरी शाला, शाला मन होती है पाठशाला, पाठशाला गोशाला रंधनशाला अर्थात घर, किंतु हो गया उल्टा। उन्होंने कहा ये सावरी शाला माने सावरी जो साले हैं, सावरी माने एक संप्रदाय था वो लोग सहजिया और उस स्थान में रह करके वो ऐसे सब काम करते थे, इसलिए उस स्थान को वो सावरी संप्रदाय का सावरी बने, उस स्थान पर रह करके उनका मंदिर किया दिया और वहीं से ग्रंथ प्रकाश करते थे। तो वो जो साले हैं तात्पर्य तो ये है कि साला गाली दिया किंतु उसका अर्थ कोई मामला मुकदमा न कर सके इसलिए सावरी शाला कर दिया, शाला माने पाठशाला, पाठशाला गोशाला वैसे ही, किंतु हुआ गाली दिया असल में किंतु कुछ न कर मारा और मार करके गला दबा दिया जो वो रोने न भी पाए, ऐसा बड़े भारी साहित्यिक थे, बड़े भारी वक्ता थे, बड़ा उनका उज्जस्वनी भाव होता था, बड़ा उनका प्रभावशाली भाव व्यक्तित्व भी आया था, बोलने का ढंग भी उनका ऐसा था, एक साथ में लिख रहे हैं लोगों से बातचीत कर रहे हैं परिक्रमा बावन महाराज, तो उसमें बावन महाराज नहीं संजल सेवा संतोष, वो संतोष उनके प्रिय संतोष थे, उनका लिखना गुरु महाराज जी जो भाषण देते थे अदल बदल फिर करने की जरूरत नहीं हो, कोई भी गलती नहीं हो, अब बामन महाराज जी का कोई स्पेलिंग मिस्टेक इत्यादि कुछ नहीं, जो लोग दिया बस प्रेस में चला गया संतोष एट गए तो। और उधर परिक्रमा के यात्री सब बैठे हुए हैं, बातचीत हो रही है सब हो रहा है, जब बामन महाराज जी उधर परिक्रमा होने जा रही है और इधर नसीम पल्ली में जाएंगे, पत्रिका पूरी नहीं हुई आज रात में छपेगी, कल लेकर के हम लोगों को जाना है, और इधर बातचीत हो रही है, हजारों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 10-20 हजार आदमी वहां से और बहुत से लोग सब बैठे हैं उसी बीच में, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं उसमें वो बोलेंगे और कोई गलती नहीं होगी उसमें, न देखना है न फिर आंख बंद, हम लोग लिखेंगे, 10 बार गलती होगी, वो ग्रंथ ले आओ, वे ग्रंथ प्रमाण सब टिकाओ, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्या घर 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 सब लिख सके ऐसे किसान। तो उन्होंने ये 5 सिंहनामा दिया, उसे वो भड़क उठे और उन्होंने लिखा रावण ने जो संन्यास लेकर के सीता का हरण किया था, उसी तरह से धर्म के नाम पर जो सहजियागिरी करते हैं, हम सब फंडा फोड़ करेंगे, एक एक करके प्रबंध लिखे। ये सारा साड़ी साला के भीत में ही गलत है, किस मने नींव, जिसके नींव में ही गलत है तो वो महल कैसे खड़ा होगा, तो वो तो झट गिर जाएगा, हम उड़ा देंगे इसको। और 95वीं सदी का विष्णु किया भजन, अब इसको अधिक हम नहीं बढ़ाएंगे, इसमें बहुत सी बातें हैं, ये सब पुराने आदमी हैं, और उसमें पत्रिका के संपादक भी उनमें से एक ये भी थे, हम लोग भी थे। उन्होंने कहा ओ भक्तिवेदन त्रिविक्रम महाराज बन गया, ओ ये नारायण बन गया स्वयं, कोई बामन स्वयं बन गया, कोई नृसिंह कोई केशव बन गया, ये सब अद्वैतवादी है। उसी के उत्तर में उन्होंने ये सब खंडन विखंडन अंतर का एक कम दूर किया, हम लोग केशव नहीं केशव दास हैं, हम नारायण नहीं हम नारायण दास, ये त्रिविक्रम दास, तुम लोग की आंखें अंधी है, तुम लोग नहीं समझता, ये प्रचार करने तुम लोग घर में बैठ कर कभी बतलाया नहीं, घर में बैठ करके भजन करने से नहीं होता, तो तुम लोग घर में बैठ करके भजन करता है, वो भजन ही नहीं है। वो हमारे प्रहलाद महाराज जी ने भी ऐसे कहा, प्राण देव मुनियो मौन चरण से भजन ही न प्रार्थन इच्छा, जो अकेले भजन करते हैं वो भजन नहीं करते। आज यदि रामानुज मध्वाचार्य विष्णु स्वामी आज नहीं आए होते, आज चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते, आज उसके बाद में रूप सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी, और उसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर जी और सर्वोपरि प्रभुपाद नहीं आए होते, तो ये लोग सबराने पर भी ये सब गौड़ी वैष्णव जाएंगे कहाँ रह जाता यदि प्रभुपाद नहीं आए होते। प्रभुपाद के लिए हम लोग जीवित हैं, नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर के और ये जितने भी ग्रंथ हैं सब रह जाते, वर्णाश्रम शुद्ध दैव वर्णाश्रम जो कहा वो प्रचारित नहीं होता। आज आप लोग यहाँ पर और हम लोग और ये मठ भी नहीं रहता, विश्व में आज जो नाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है, विदेशों में गो मांस खाने वाले और क्या क्या करने वाले ले रहे हैं, आज ये होता ये सब छूट गया होता, आज उनकी की कृपा और महिमा से ये हो रहा है। तो उन लोगों ने केस कर दिया मेदिनीपुर में, इनके नाम से हमारे नाम से बामन महाराज जी के गुरु नरसिंह महाराज जी के नाम से केस कर दिया, और हम गुरु जी आए यहाँ, त्रिविक्रम महाराज जी यहाँ आए, उस समय बामन महाराज जी को रखा है फिर त्रिशूला ने, बस समन छिपा छिपा करके वारंट कर दिया, और वारंट में त्रिशूला मठ को ले लेंगे और मठ को प्रेस को लेकर के अब बेच देंगे, नीलाम करा देंगे, ऐसी उनकी कल्पना और सब तरह तरह से गड़बड़ करेंगे, किंतु कुछ न कर सके, भगवान जी की रक्षा करने वालों कुछ नहीं कर सके। अंत में केस किया था मान हानि का सब लोगों के ऊपर में, गुरु जी को मैंने कहा और लोग तो ये थे, मैंने गुरु जी से कहा, मैं जो मैंने उनसे कहा था वो कहा था, मैंने कहा जी गुरु जी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कलकत्ते में सबसे जो बड़ा बैरिस्टर हो या वकील हो उसको कम के किसी का मत करें, और इस केस में हारना नहीं। उन्होंने सचमुच में एक कलकत्ते में, कलकत्ता माने विश्व इकाई समझो, नहीं कुएं को साबित कर देगा ये पहाड़ है, पहाड़ को साबित कर देगा ये कुआ है, ऐसा एक वकील मनमथ राय वकील मनमथदार अद्भुत हुआ। गुरु जी उसको किया, वो 1 घंटा खड़ा हो जाएगा 4-5 हजार रुपया लेने वाला, और साधारण केस में खड़ा नहीं होता। तो गुरु जी गए तो गुरु जी से कहा जैसे हम पैदा होता भी कुछ नहीं लेंगे, हम जरूर आपका केस करेंगे और प्रमाणित कर देंगे ऐसा। बस हो गया, हम लोग भी गए, महाराज जी गए, केस उठा, मनमथ राय जब उठा था एकदम सब जितने लोग थे सब भर गए, यहाँ के वकील और सब उसका भाषण सुनने के लिए, तो कहा मैं आया हूँ ये साबित करने के लिए, जो इन्होंने लिखा है और साबित करके यहाँ से जाऊंगा, और नहीं तो वो केस अपना उठा ले।
वो नहीं उसको उठने बोलो। हाँ। तो जो बोलना है बोलने लो।
ये बीच में न्यायालय के जो जज थे उन्होंने कहा आप विवाद मत कीजिए, इनका अपमान होगा हो जाएगा, आप साधु साधु का लड़ना ठीक नहीं। जिन्हें कहा साधु साधु का लड़ना, अरे हम लोग आए हैं इसीलिए जगत का संस्कार करने के लिए, देश या प्रचार करने के लिए आए, और हम लोग जब नहीं कहेंगे तो कौन ये देश करेगा, तो संसार भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं कीजिए, किंतु साधु भाषा में होना चाहिए। तो ये महाराज जी उठ करके खड़े होकर के इनको जोश आ गया, बस उठ करके बोले सहज और सरल भाषा से काम नहीं चलता, कौन सुनता है, इसलिए ऐसे ही भाषा का प्रयोग होगा। याद भी नहीं कैसे इन्होंने क्या
ठीक गिराने से क्या होगा,
और एक पूरी चपकाने से क्या होगा, जहाँ पर की बल्लम छोड़ने से बम छोड़ने से काम, वहाँ पर सुई से क्या होगा। अंत में उन लोगों ने मिल करके उनको कहा जो केस उठाओ, नहीं तो बड़ा भारी गड़बड़ हो जाएगा। तब उन लोगों के कहने से फिर के उन्होंने कहा जैसे आप भी उत्तर मत दीजिए, ये भी उत्तर न जे हो जाए, बुझे हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसा होगा वहीं पर होगा, या तो केस उठा दे नहीं तो केस चलेगा।
मैं तो केस नहीं किया, उन्होंने
उन्होंने केस किया है, इसलिए केस उठाए। अंत में बाध्य होकर के हाथ जोड़ करके कहिए हम ऐसा नहीं, ऐसे तेजियां थे, और उनके ये सब शिष्य लोग भी कम मत समझना, देखने में ये सब ऐसे हैं, बड़े बड़े धुरंधर लोग शिष्य हैं, हजार लोगों की सभा में इस समय आजकल करके दिनों में, और गौड़ीय वैष्णव लोग प्रचार नहीं करते आजकल, क्या करते हैं, वो कहते हैं कि गंगा नदी उस पार की और इस पार की, और गंगा नदी भर गई है, अब पैदल चलेंगे दोनों मिल जाएंगे। तात्पर्य क्या, कुछ वैष्णव लोग अभी कुछ दिन पहले महाप्रभु जी की पंचशती में नवदीप में सभा हुई, तो उसमें सहजिया भी आए, सब आए का जो सब अब मिल गए, एक हो गए, गंगा का इस पार मैंने बात समाज और सहजिया बाबा जी, और उधर में मायापुर, दोनों में विरोध रहता था प्रभुपाद जी के समय, अब वो दोनों मिल गए तो मतलब क्या हुआ। उन्होंने मायापुर वालों ने माने हम लोगों ने सहजियाओं का और स्मार्टों का विचार ग्रहण कर लिया, अब दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, गुरु जी ऐसे नहीं थे और हम लोग भी ऐसे नहीं हैं, इसलिए और लोग सब सब ऐसा चलते हैं, लोग जैसा रहते हैं उनके मन के मुताबिक बात कर, हम लोग अभी गौड़ीय वेदांत समिति के ऐसा नहीं कर, किसी से अभी आपस और सुधारना नहीं करना जानते, जो चीज ठीक है वैसा ही कहेंगे, जब समस्त समाज विश्व भी विरोधी हो जाए हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, ये गुरु जी की सबसे बड़ी सेवा है। और घर के कोने में बैठ करके कोई हजार कर रहा है तो उसका कुछ प्रतिवाद नहीं करेंगे, तो ये क्या भजन हुआ। तो योग्यता भी ऐसी चाहिए ना, कहने के लिए कुछ यहाँ पर जोर और दम भी होना चाहिए ना, ऐसे नहीं होता है, तो कहने के लिए सिद्धांत में प्रवीण दार्शनिक तत्व शास्त्रों का अनुशीलन ऐसा हो, सब तो गुरु सेवा हो, और नहीं तो ऐसे नहीं चुपचाप परिणाम कर लिया, कोने में बैठ गए और बस हो गया। ये सब महाराज जी ने सूत्र रूप में कहा, मैंने थोड़ा सा विकसित करके कहा, और भी गुरु जी की बहुत सी महिमा थोड़ी सी उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालू। यूं तो किसी शिष्य का परिचय क्या है, किसी भी व्यक्ति का उसका गुरु से परिचय, जो ऐसे गुरु जी के ये शिष्य, यही तो शिष्य का परिचय। तब भी इस जगत में लोग पूछते हैं कि कहाँ उनका जन्म हुआ, माता पिता कौन थे, किंतु ये गुरु का या किसी वैष्णव का यथार्थ परिचय नहीं है, ये एक व्यवहारिक परिचय। इस परिचय से भी वो एक महान थे, बड़े भारी जमींदार के घर में पूर्व बंगाल में नुआखली जिले के अंतर्गत में बरिशाल में कौन गांव, पारा नामक ग्राम में आविर्भूत हुए, प्रकट हुए, जन्म नहीं लिया, आविर्भूत हुए, बड़े सुंदर थे, उनका सियंग ऐसा कोमल था, देखा इतना कोमल, इतना सुंदर, अंगुलियां उनकी ऐसी पतली, कलाकारी,
आर्टिस्टिक,
एकदम सुंदर, बड़ा सुंदर, खूब पतला
एकदम
दार्शनिक, आर्टिस्टिक भी दार्शनिक, और इतना कोमल ये श्री अंग, ये ऐसा देखा नहीं है, और अजानुलंबित भुजा भी, लंबी लंबी उनकी भुजाएं यहाँ तक आने वाली, बड़ा सुलक्षण चित्त चेहरा, रुई से भी अधिक कोमल, हम लोग पैर कभी कभी दबाते, रुई से भी अधिक, और हृदय कैसा, परमपुर, और लोगों के लिए बात के समान, जैसे नृसिंह सब लोगों के लिए बात के समान, किंतु आपने पुत्रों के यहाँ, आश्रितजनों के यहाँ वो कैसा हो जाता है, एकदम ऐसा पूछ चलाता है, उसके ऊपर में पीठ में सिंह के ऊपर में सिंह का बच्चा बैठ जाए तो क्या करता है, पूछ ला करके स्नेह करता है, और लोगों के समान सामने बड़ा भारी है, गुरु जी की राशि बड़ी भारी, राशि मैंने राशि का हिंदी का शब्द नहीं, बंगला क्या है राशि, खूब भारी, उनका व्यक्तित्व बड़ा गंभीर था, उनके गुरु भाई लोग भी उनके सामने बैठ नहीं सकते थे, सब लोग नीचे बैठते थे, वो क्या था बैठते सन्यासी लोग, जब ये ब्रह्मचारी थे सफेद कपड़े में मखमल के कपड़े पहनते और आधी धोती शांतिपुर वाली, बड़े साथ घोड़े रखते थे चढ़ने के लिए है? और मोटर पर चलते थे, हाथ में वो छड़ी रहती थी, खूब बाबुआनी ठाट वाली, साधारण रूप में नहीं, और बड़े बड़े सन्यासी लोग उनको प्रणाम करते थे। एक समय में वो बैठे हुए थे कटहल के पेड़ के नीचे, जहाँ पर जमींदारी करते थे मायापुर की रक्षा, और उसी समय में एक मोटे ताजे लंबे चौड़े सन्यासी, नाम भी ले लें, पूज्य भारती महाराज, उनके यहाँ आए और दूर से उनको प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए उनके पास में, और धीरे से कुछ पूछा, और ये महापुरुष क्या कर रहे हैं, पैरों पर पैर दे करके टेबल के ऊपर में पैर रख करके, और ऐसे ऐसे आराम इजी चेयर पर बैठते थे, साधारण चेयर पर, इजी चेयर पर बैठ करके और पैर दुला रहे हैं, और ऐसे बैठे हुए कोई गंभीर चिंतन में, और वो आकर के खड़े हुए, पूछा और इन्होंने कुछ कहा, फिर प्रणाम करके चले गए। ये देख कौन रहा है,
श्रीधर महाराज,
ये श्रीधर महाराज जी के मुख सामने सुना है, बड़े भारी वैदांतिक और दार्शनिक पंडित श्रीधर महाराज जी, अद्भुत विचार उनके, तो वो कह रहे थे कि मैंने इनको देखा, ये कौन है ब्रह्मचारी जिसको सन्यासी लोग इतने अदब के साथ में और श्रद्धा के साथ में प्रणाम करते हैं, क्यों कर रहे हैं, बात क्या है, जरूर उसमें कुछ है। पीछे से सुना, इन्होंने ही प्रभुपाद जी के अनुगत्य में मायापुर को बसाया, मुसलमानों की कब्र को एक रात में उड़ा करके जिन्हें कहां फेंक दिया, बहुत लंबी कहानियां है, और यहां पर सुरभि कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर जी का आश्रम स्वरूपगंज में, जो कि ललिता प्रसाद उनके गुरु प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने दखल कर लिया था, एक मिनट के अंदर में चुटकी बजाते ही उसको दखल कर लिया, जहां जहां पर भी ऐसा गंभीर काम पाया, जहां पर कि प्राण जाने का नौबत आया, वहां पर गुरु जी अकेले चुटकी बजाते हुए वो काम कर देते थे। भारी वो दार्शनिक पंडित भी थे, इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने दर्शन की समस्त पुस्तकें, ये ब्रह्म सूत्र इत्यादि, उसकी टीकाएं और सब ग्रंथ आचार्यों के ग्रंथ गुरु जी को दे दिया था। गुरु जी कब पढ़ते थे पता नहीं, यहाँ का जब ग्रंथ लाइब्रेरी हम लोग देखते हैं सब पर इम्पोर्टेंस लिखा हुआ है, और लाल दाग, ऐसा कोई विशेष बात नहीं जिस पर वो दाग न लगा, मायापुर वहाँ पर भी नवदीप के लाइब्रेरियों में भी बड़ी पुस्तकों से बड़ी उनकी रुचि रहती थी, सब इतिहास जानते थे, केवल दार्शनिक इतिहास नहीं, अनंत वासुदेव जी, सुंदरानंद विद्याविनोद, हरिदास दास, इनका वंश की जितना था नाड़ी नक्षत्र सब कुछ जानते थे। ऐसा कोई बात नहीं था जिसको वो नहीं जानते। अद्भुत नगे कहाँ से किए सब करते, इसी तरह से उनके जीवन में देखा गया। जब मठ छोड़ करके आए तो सबसे पहले गौड़ीय वेदांत की स्थापना 1940 में, शायद या 41 में उन्होंने कलकत्ते में की, बाग बाजार को बहुत सारा ले ली। और उस समय में ये इस्कोन वाले जो महाराज हैं वो भी थे, हम लोगों का भी जन्म नहीं हुआ था अभी। बावन महाराज जी बालक काल में आए थे, 8-9 वर्ष की उम्र में, और उनकी मैया ने और पिताजी ने गुरुजी को ही सौंप दिया था, इसलिए वो थे, वो प्राचीन आदमी। यहाँ तक कि श्रीधर महाराज जी से पहले के आए हुए हैं, साधारण आदमी वो नहीं। कागभूषुंडी है वो, कागभूषुंडी माने क्या है? तो वो उस समय थे, और उस समय में और भी कुछ लोग थे, वो शांत महाराज अभी का जो है वो भी थे, और सब लोग करीब करीब चले गए हैं। तो